एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
नमस्कार। तो आज हम सब कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा भागदौड़, थोड़ा ज्यादा तनाव महसूस करते हैं, है ना?
हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे मन की शांति एक दुर्लभ चीज हो गई है आजकल।
सही का। और इसी खोज में आज हम हजारों साल पुराने ज्ञान के खजाने में गोता लगा रहे हैं,
पतंजलि के योग सूत्र।
हाँ, पतंजलि के योग सूत्र। लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे किसी भारी भरकम फिलॉसफी क्लास की तरह नहीं देखने वाले।
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक और दिल को छूने वाले नजरिए से देखेंगे।
हाँ, और इस सफर में हमारे गाइड हैं श्री स्वामी सच्चिदानंद। उन्होंने पतंजलि के इन गूढ़ सूत्रों को इतने सरल और मजेदार तरीके से समझाया है।
हाँ बिल्कुल,
कि लगता है जैसे कोई प्यारा बुद्धिमान दोस्त हमें जिंदगी के राज बता रहा हो।
सही।
तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि स्वामी जी की मदद से समझें कि योग का असल मतलब क्या है, उसकी असली भूमिका, उसका रोल क्या है, और उसका अंतिम लक्ष्य, उसका गोल क्या है। क्या ये सिर्फ फिट रहने का तरीका है
या उससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ, मन को साधकर सच्ची आजादी पाने का विज्ञान।
एग्जैक्टली।
चलिए तो पहले स्वामी सच्चिदानंद जी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वो कौन थे?
हाँ जरूर। स्वामी सच्चिदानंद जी 1914-2002 एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने पूरब और पश्चिम के बीच जैसे एक पुल बनाया।
अच्छा।
भारत के महान संत स्वामी शिवानंद के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने योग के संदेश को खासकर अमेरिका और यूरोप में बहुत ही अनोखे ढंग से पहुंचाया।
अनोखा कैसे? मतलब और भी तो गुरु गए हैं पश्चिम में।
हाँ गए हैं, लेकिन स्वामी जी की खासियत थी उनकी सहजता और व्यावहारिकता।
हाँ ये बात तो है।
वो भारी भरकम सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी, मजाक, कहानियों से जोड़ देते थे। आपको पता है उन्हें 1969 के मशहूर वुडस्टॉक फेस्टिवल में उद्घाटन भाषण के लिए भी बुलाया गया था।
अरे हाँ, वुडस्टॉक। सोचिए, हजारों हिप्पी युवाओं के सामने योगा और शांति का संदेश।
कमाल है ना, वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, उन्होंने जो सिखाया उसे जिया भी।
बिल्कुल, उनका एक सिद्धांत था इंटीग्रल योगा।
इंटीग्रल योगा मतलब
योग सिर्फ आसन करना नहीं है, ये शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा सबके विकास का एक मिलाजुला रास्ता है।
अच्छा, होलिस्टिक अप्रोच एक तरह से।
हाँ बिल्कुल, और उनका वो संदेश भी कितना शक्तिशाली था, सत्य एक है, रास्ते अनेक हैं। उन्होंने योग को किसी धर्म के बंधन में नहीं बांधा, उसे मन को समझने और शांत करने का एक यूनिवर्सल साइंस, एक मनोविज्ञान बताया
जो किसी भी बैकग्राउंड के इंसान के लिए काम आ सकता है।
हाँ, और यही नजरिया उनकी पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में झलकता है।
सही। तो अब आते हैं इन सूत्रों पर। ये हैं क्या असल में पतंजलि योग सूत्र?
देखिए, ये करीब 196 बहुत छोटे सार गर्भित वाक्य हैं।
सूत्र मतलब धागे।
हाँ, ज्ञान के धागे समझ लीजिए, जो बताते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है और कैसे हम उसे शांत करके अपनी असली प्रकृति यानी शांति और आनंद को पा सकते हैं।
तो स्वामी सच्चिदानंद की किताब सिर्फ इनका ट्रांसलेशन नहीं है?
नहीं बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ शब्दों का मतलब नहीं बताते, वो हर सूत्र के पीछे छिपे गहरे अर्थ को खोलते हैं।
अच्छा।
उसे आज की जिंदगी से जोड़ते हैं। किताब का जो मूल तर्क है ना, वो ये है कि हमारी सारी बेचैनी, सारा दुख हमारे मन की लगातार चलती रहने वाली उछल कूद से पैदा होता है।
चित्तवृत्ति।
हाँ, पतंजलि इसे चित्तवृत्ति कहते हैं, यानी थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज का लगातार चलते रहना बिना रुके।
अच्छा, मतलब मन का लगातार सोचना, चिंता करना, यादों में खोए रहना, यही प्रॉब्लम है?
हाँ, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है हमारा इन वृत्तियों से खुद को जोड़ लेना, ये मान लेना कि मैं ही ये विचार हूँ या मैं ही ये भावना हूँ। पतंजलि कहते हैं योग की भूमिका, योग का रोल इन्हीं वृत्तियों को शांत करना है।
निरोध।
हाँ, निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यही उनका पहला और सबसे मशहूर सूत्र है। योग का मतलब है मन की इन लहरों का शांत हो जाना।
तो ये किताब हमें इस पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराती है, समस्या क्या है जो कि मन की बेचैनी है।
हाँ।
समाधान क्या है, यानी वृत्तियों को रोकना।
सही।
और रास्ता क्या है, मतलब कैसे रोकें।
एग्जैक्टली, ये एक तरह का प्रैक्टिकल मैनुअल है मन को समझने और साधने का।
कोई फिलोसफी की भारी किताब नहीं?
नहीं, ये कदम दर कदम गाइड है। अब थोड़ा और अंदर चलें। ये सूत्र चार हिस्सों यानी पाद में बटे हैं।
हाँ हाँ जरूर। तो पहला हिस्सा है समाधि पाद। समाधि सुनने में थोड़ा भारी लगता है।
हाँ लगता तो है, लेकिन स्वामी जी इसे सरल बनाते हैं। यह हिस्सा उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनका मन थोड़ा पहले से शांत है या जो साधना में थोड़े आगे हैं।
अच्छा।
गश्चित्त वृत्ति निरोधः।
सूत्र 1.2।
योग मन के उतार चढ़ाव का नियंत्रण है। स्वामी जी समझाते हैं कि हमारी असली पहचान शांति है। ये वृत्तियां तो बस बादलों की तरह हैं जो उसे ढक लेती हैं।
ओके।
योग का काम इन बादलों को हटाना है।
लेकिन ये बादल हटेंगे कैसे? सिर्फ सोचने से तो नहीं हटते।
बिल्कुल नहीं। यही पतंजलि दो पंख देते हैं उड़ान के लिए, अभ्यास और वैराग्य।
अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड नॉन अटैचमेंट।
हाँ, अभ्यास यानी लगातार कोशिश करते रहना, मन को टिकाने का प्रयास करना रोज।
ठीक है।
और वैराग्य यानी दुनिया की चीजों और इच्छाओं से थोड़ी दूरी बनाना, उनमें उलझना नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि ये दोनों साथ में जरूरी हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, जैसे पक्षी के दो पंख।
ये वैराग्य सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है आज की दुनिया में। मतलब सब कुछ पाने की दौड़ लगी है, उसमें अनासक्ति कैसे, डिटैचमेंट?
ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्वामी जी वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना या साधु बन जाना नहीं बताते।
अच्छा।
वो कहते हैं इसका मतलब है चीजों का आनंद लो, पर उनके गुलाम मत बनो। अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर पूरी तरह निर्भर मत करो। ये एक मानसिक नजरिया है, एक एटीट्यूड है।
ओके। मतलब चीजें इस्तेमाल करो पर उनसे चिपक मत जाओ।
बिल्कुल। इसी अध्याय में मन को शांत करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों की भी बात है, जैसे शक, आलस, बीमारी। 9 बाधाएं गिनाई हैं।
ये तो होती हैं।
और उनके समाधान भी बताए हैं, जैसे एक समाधान है ईश्वर प्रणिधान, यानी किसी उच्च शक्ति के प्रति समर्पण।
समर्पण।
हाँ, पर स्वामी जी इसे किसी धार्मिक कट्टरता से नहीं जोड़ते। वो इसे अहंकार को कम करने का एक बहुत पावरफुल मनोवैज्ञानिक तरीका मानते हैं, मैं को थोड़ा पीछे हटाना।
ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये था पहला पाद। अब दूसरा पाद साधना पाद में क्या है, ये किसके लिए है?
साधना पाद हम जैसे आम लोगों के लिए है जिनका मन ज्यादातर समय भटकता रहता है, स्टेबल नहीं रहता।
हम सब के लिए मतलब?
हाँ बिल्कुल। इसकी शुरुआत होती है क्रिया योग से।
ये तैयारी के 3 कदम हैं।
3 कदम
कौन से?
तप अनुशासन, थोड़ी कठिनाई सहने की क्षमता, स्वाध्याय, खुद को जानना, सेल्फ स्टडी, आत्मनिरीक्षण करना। और वही ईश्वर प्रणिधान, समर्पण। ये तीनों मिलकर मन की अशुद्धियों को, गंदगी को साफ करते हैं और हमें आगे की यात्रा के लिए तैयार करते हैं।
ओके, ये एक तरह की क्लीनिंग प्रोसेस है।
हाँ कह सकते हैं। और इसी में दुखों के कारणों की बात भी आती है, वो क्लेश।
हाँ क्लेश, मैंने सुना इसके बारे में। 5 क्लेश हैं शायद।
हाँ, पतंजलि 5 मूल क्लेश बताते हैं, यानी वो जड़ें जिनसे सारे दुख पैदा होते हैं।
क्या है वो?
सबसे पहली और सबसे गहरी जड़ है अविद्या, यानी अज्ञान, इग्नोरेंस।
अज्ञान? किस चीज का अज्ञान?
अपने असली स्वरूप का अज्ञान। हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, हम कुछ और गहरा, कुछ ज्यादा स्थायी हैं। इसी अविद्या से बाकी 4 क्लेश निकलते हैं, अस्मिता, अहंकार या मैपन, ईगोइज्म, राग, किसी चीज से चिपकाओ, अटैचमेंट, द्वेष, किसी चीज से नफरत या घृणा, अवर्जन।
ओके।
और अभिनिवेश, मरने का डर या जिंदगी से जबरदस्ती चिपके रहना,
क्लिंगिंग टू लाइफ।
ये अविद्या वाली बात, ये तो बहुत सोचने वाली है कि शायद हमारी ज्यादातर परेशानियां एक बुनियादी गलतफहमी से शुरू होती हैं कि हम हैं कौन।
बिल्कुल।
और इसी अविद्या को मिटाने के लिए, इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए पतंजलि एक पूरा नक्शा देते हैं, एक डिटेल्ड रोड मैप।
वो है अष्टांग योग।
हाँ, अष्टांग योग यानी योग के 8 अंग। ये एक बहुत ही व्यवस्थित साइंटिफिक रास्ता है। इसमें सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं।
हाँ मैंने सुना है इसके बारे में, यम, नियम, आसन, क्या है ये संक्षेप में?
हाँ तो देखिए, पहले है यम और नियम। ये नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन है, जैसे सच बोलना, चोरी न करना, किसी को दुख न पहुंचाना, अहिंसा, संतोष रखना, सफाई रखना, ये योग की नींव है। इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है।
फाउंडेशन। ओके।
फिर आता है आसन। यहाँ पतंजलि का मशहूर सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम।
स्थिरम सुखम आसनम
मतलब आसन वो है जिसमें आप स्थिरता से और आराम से बैठ सकें। स्वामी जी जोर देते हैं कि इसका मकसद जिम्नास्टिक करना या मुश्किल पोज बनाना नहीं है।
तो फिर क्या है?
इसका असली मकसद है शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना, ताकि शरीर हिले डुले नहीं, उसमें दर्द न हो और मन शांत रह सके।
अच्छा, तो आसन ध्यान के लिए एक टूल है।
बिल्कुल। फिर है प्राणायाम, सांस पर नियंत्रण। ये सिर्फ फेफड़ों की कसरत नहीं, बल्कि शरीर की ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, उसे संतुलित करने का तरीका है।
इससे क्या होता है?
स्वामी जी बताते हैं कैसे सही तरीके से सांस लेने से मन तुरंत शांत हो सकता है। जैसे चिंता या घबराहट में ये बहुत कारगर है, डीप ब्रीदिंग जिसे कहते हैं आजकल।
हाँ हाँ।
फिर है प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों को बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है ना, वैसे ही,
मतलब बाहरी डिस्ट्रैक्शन से हटना।
हाँ। इसके बाद आते हैं ध्यान के आंतरिक अंग, धारणा, यानी मन को एक जगह टिकाना सीखना, फोकस करना,
कॉन्सेंट्रेशन।
हाँ। फिर ध्यान, उसी फोकस का बिना टूटे लगातार बने रहना, मेडिटेशन। और आखिर में समाधि, ध्यान की वो गहरी अवस्था जहाँ मैं का भाव घुलने लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भेद मिटने लगता है।
ये तो पूरी एक यात्रा है, स्टेप बाय स्टेप।
बिल्कुल। और इसी साधना पाद में एक और सूत्र है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत उम्मीद देता है।
कौन सा?
हेयम दुखम अनागतम, सूत्र 2.16।
हेयम दुखम अनागतम का मतलब?
इसका मतलब है जो दुख अभी आया नहीं है उससे बचा जा सकता है, उसे रोका जा सकता है।
अरे वाह, ये कितनी बड़ी राहत की बात है। मतलब हम आने वाले दुख को रोक सकते हैं।
हाँ, ये योग को सिर्फ दुख दूर करने वाला, क्यूरेटिव नहीं, बल्कि दुख को आने से रोकने वाला प्रिवेंटिव विज्ञान बनाता है।
ये तो बहुत पॉजिटिव है। मतलब हम अपने भविष्य के दुख को अपने आज के कर्मों और समझ से बदल सकते हैं।
बिल्कुल, यही योग का सशक्तिकरण है। अब आते हैं तीसरे पाद, विभूति पाद पर। विभूति मतलब
उपलब्धियां या कह लें सिद्धियां।
सिद्धियां मतलब सुपर पावर्स, जैसे दूसरों का मन पढ़ना या गायब हो जाना, फिल्मों जैसा।
हाँ, कुछ वैसा ही। पतंजलि बताते हैं कि जब धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलाकर संयम कहते हैं, जब संयम को साधा जाता है तो कुछ असाधारण क्षमताएं आ सकती हैं।
सच में?
पतंजलि के अनुसार
हाँ।
जैसे भूत भविष्य का ज्ञान, दूसरों के मन की बात जानना, अणु जितना छोटा या पहाड़ जितना बड़ा हो जाना, ऐसी कई सिद्धियों का जिक्र है। लेकिन
लेकिन
यहां कोई कैच है।
हाँ, और ये लेकिन बहुत बड़ा है। स्वामी सच्चिदानंद यहाँ पतंजलि की चेतावनी को बहुत जोर देकर समझाते हैं।
क्या चेतावनी है?
चेतावनी ये है कि ये सिद्धियां भले ही सच हों, पर ये योग के असली लक्ष्य यानी मुक्ति, कैवल्य के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं।
रुकावट
क्यों?
क्योंकि ये अहंकार को बहुत बढ़ा सकती हैं। आदमी इनमें ही उलझ कर रह जाता है। स्वामी जी का वो मशहूर उदाहरण है, ये रास्ते में खिले सुंदर फूलों की तरह हैं।
अच्छा,
अगर आप फूल तोड़ने में ही लग गए तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे?
बात तो सही है।
असली योगी इन्हें देखता है, शायद मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। योग का असली लक्ष्य, असली गोल ये शक्तियां पाना नहीं है।
तो क्या है?
मन पर पूरी तरह काबू पाना है, अहंकार से मुक्त होना है।
ये बहुत जरूरी बात है, खासकर आजकल जब योग को कई बार चमत्कारिक शक्तियों से जोड़ा जाता है, तो फिर असली मंजिल क्या है?
वो चौथे पाद, कैवल्य पाद में है।
हाँ, कैवल्य पाद। कैवल्य का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये सबसे गहरा, सबसे दार्शनिक हिस्सा है।
इसमें क्या बताया है?
इसमें समझाया गया है कि कैसे हमारे पिछले कर्मों के गहरे निशान, जिन्हें संस्कार कहते हैं, हमारे मन में जमा होते हैं।
संस्कार मतलब आदतें या पैटर्न?
हाँ, गहरी आदतें, मानसिक पैटर्न, इनसे इच्छाएं, वासनाएं पैदा होती हैं और हम फिर कर्म करते हैं, और ये कर्म फल का चक्र चलता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र।
तो इस चक्र से बाहर कैसे निकले, यही कैवल्य है।
हाँ, पतंजलि कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हम असल में कौन हैं। वो दो चीजों में फर्क करते हैं, पुरुष और प्रकृति।
पुरुष और प्रकृति?
पुरुष यानी शुद्ध चेतना, देखने वाला, साक्षी, जो बदलता नहीं, जो हमेशा रहता है। और प्रकृति यानी ये पूरी सृष्टि, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, भावनाएं, दुनिया की सारी चीजें, सब कुछ जो बदलता रहता है, जो जड़ है।
तो हम कौन हैं? पुरुष या प्रकृति?
हम असल में पुरुष हैं, शुद्ध चेतना। लेकिन हमारी सारी समस्या इसलिए है क्योंकि हम इस पुरुष असली मैं को प्रकृति, शरीर, मन, विचार, भावनाएं समझ लेते हैं।
अच्छा, मतलब हम खुद को अपना शरीर या अपने विचार समझ लेते हैं?
हाँ, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। योग इसी गलत पहचान को तोड़ता है। वो दिखाता है कि तुम रस्सी हो, सांप नहीं।
तो कैवल्य क्या है? वो अवस्था कैसी होती है?
कैवल्य वो अवस्था है जब ये गलत पहचान पूरी तरह टूट जाती है। मन की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, सारे क्लेश मिट जाते हैं। पुरुष अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है, प्रकृति के असर से पूरी तरह आजाद।
पूरी तरह आजाद?
हाँ, परम शांति, परम स्वतंत्रता की स्थिति है। यही योग का परम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल है। ऐसा नहीं कि दुनिया खत्म हो जाती है या आप महसूस करना बंद कर देते हैं।
तो फिर
आप दुनिया में रहते हैं, काम करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, पर उसके उतार चढ़ाव से, सुख दुख से बंधते नहीं। आप एक साक्षी भाव से जीते हैं। स्वामी जी कहते हैं ये जीवन मुक्त अवस्था है, जीते जी मुक्ति।
वाह, ये तो बहुत गहरा है। अगर हम इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालें जो सुनने वालों के लिए याद रखने लायक हों, तो वो क्या होंगे? मेरे लिए पहली बात तो यही है कि हमारी खुशी या दुख का कंट्रोल बाहरी चीजों में नहीं, हमारे अपने मन में है। योग हमें वो कंट्रोल वापस लेना सिखाता है।
बिल्कुल सही, ये सबसे जरूरी बात है। और दूसरी बात, वो दो पंख, अभ्यास और वैराग्य।
हाँ,
लगातार कोशिश और चीजों में न उलझने का नजरिया, ये दोनों साथ चलेंगे तभी उड़ान संभव होगी। एक के बिना बात नहीं बनेगी।
तीसरा, ये समझना कि योग सिर्फ आसन नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान है। एक कदम दर कदम रास्ता, वो अष्टांग योग।
हाँ,
जो मन को समझने और साधने का तरीका है। इसका रोल सिर्फ शरीर को लचीला बनाना नहीं बल्कि चित्त की वृत्तियों को शांत करना है।
बिल्कुल। और चौथी ये कि सारे दुखों की जड़, वो बुनियादी गलतफहमी है, अविद्या।
खुद को शरीर और मन मान लेना।
हाँ, और असली लक्ष्य, असली गोल है अपनी सच्ची पहचान, पुरुष को जानना और उसमें स्थित हो जाना, जो इन सब बदलावों से परे है, शांत है, स्वतंत्र है।
और वो सिद्धियां या शक्तियां?
वो मंजिल नहीं, बस रास्ते के पड़ाव है, उनमें अटकना नहीं है।
सही। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मतलब ऑफिस का स्ट्रेस है, घर की चिंताएं हैं।
हाँ, ये सवाल सबके मन में आता है, और यही स्वामी सच्चिदानंद की खूबी है। वो इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं।
कैसे? कुछ उदाहरण?
जैसे मान लीजिए ऑफिस में बहुत स्ट्रेस या एंग्जाइटी महसूस हो रही है, क्या करें? प्राणायाम। वहीं बैठे बैठे कुछ गहरी धीमी सांसें लें, आप देखेंगे ये तुरंत नर्वस सिस्टम को शांत करता है।
हाँ, डीप ब्रीदिंग तो काम करती है।
या काम पर फोकस नहीं बन रहा है, मन भटक रहा है, धारणा का अभ्यास करें। किसी एक चीज पर ध्यान टिकाने की कोशिश करें, चाहे वो आपकी सांस हो या कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या काम का एक छोटा सा हिस्सा, बस कुछ देर के लिए।
अच्छा।
और रिश्तों में जैसे गुस्सा आ जाता है या किसी से ज्यादा मोह हो जाता है,
क्लेशों को समझें। जब गुस्सा है तो पहचानें कि ये शायद द्वेष, नफरत की वृत्ति है। जब किसी चीज इंसान के बिना रहा ना जाए तो समझे ये राग, चिपकाव है,
अटैचमेंट।
सिर्फ ये पहचान लेना ही पहला कदम है,
सेल्फ अवेयरनेस।
हाँ, फिर आप आदतवश रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और यम और नियम जैसे अहिंसा।
अहिंसा मतलब सिर्फ मारपीट नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कड़वे बोल बोलना, मन में बुरा सोचना, ये भी हिंसा है।
और संतोष जो है उसमें खुश रहना सीखना, ये चीजें हमारे रिश्तों और मन की शांति पर सीधा असर डालती हैं। संतोष तो आजकल के उपभोक्तावाद का तोड़ है।
बात तो है। और बुरी आदतें जैसे बार बार फोन चेक करना या कुछ अनहेल्दी खाना,
वो संस्कार हैं, मन में पड़ी गहरी लकीरें, आदत के पैटर्न। उन्हें मिटाने के लिए तप, थोड़ा अनुशासन, थोड़ी इच्छा शक्ति और अभ्यास, नई अच्छी आदत डालने की लगातार कोशिश चाहिए। योग हमें बताता है कि ये संभव है, हम अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम उन्हें बदल सकते हैं।
तो कुल मिला के लगता है योग सूत्र हमें एक तरह का ओनर्स मैनुअल देते हैं हमारे मन के लिए।
बिल्कुल, आपने सही कहा। और स्वामी सच्चिदानंद उस मैनुअल को पढ़ना और इस्तेमाल करना सिखाते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि योग हमें ये याद दिलाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं है, विक्टिम नहीं है। हम अपने मन को साधकर अपनी शांति खुद बना सकते हैं। दुख एक सीखी हुई चीज है जिसे भुलाया जा सकता है। इट कैन बी अनलर्न्ड।
मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा घर कर गई वो स्वामी जी का वो नजरिया है। उन्होंने इस गहरे ज्ञान को इतना सुलभ, इतना प्यारा बना दिया है, लगता ही नहीं कि हजारों साल पुरानी बात पढ़ रहे हैं।
हाँ, वो इसे डराने वाला या बहुत गंभीर साधना नहीं, बल्कि एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन बनाते हैं, खुद को जानने का एक मजेदार सफर।
सही।
उनकी व्याख्या इस प्राचीन ग्रंथ को वाकई में आज की दुनिया के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बना देती है, मन की शांति पाने का रास्ता।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एक्टर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।